पाठ 19 अध्याय 12 और 13। हमने पिछले सप्ताह कोशेर भोजन के बहुत कठिन मुद्दे को निपटा दिया और लैव्य व्यवस्था अध्याय 12 की तैयारी में लग गए, लेकिन दुर्भाग्य से हम खुद को तवे से बाहर आग में पाते हैं, क्योंकि हमें शुद्ध और अशुद्ध के मामले का सामना करना पड़ता है, जिसे अनुष्ठान शुद्धता कहा जाता है। बाइबल में कभी कभी स्वच्छ और अशुद्ध शब्दों के स्थान पर हम शुद्ध और अशुद्ध शब्द देखेंगे। क्या ये सिर्फ समानार्थी शब्द हैं? क्या स्वच्छ और शुद्ध या अशुद्ध और अशुद्ध एक ही बात कहने के दो तरीके हैं? बिल्कुल नहीं। शुद्ध अशुद्ध के संपर्क और मिलन से बचने का परिणाम है और अशुद्ध अशुद्ध के संपर्क और मिलन में आने का परिणाम है। इन सभी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण शब्द है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब है पवित्रता का नुकसान और धार्मिक शुद्धता का नुकसान। अशुद्ध होने से अशुद्धता आती है। यहां एक उदाहरण दिया गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बीमारियां कहते हैं। वायरस, कीटाणु, बैक्टीरिया इत्यादि उन्हें पैदा कर सकते हैं। यदि आप उनके संपर्क में आते हैं और आपको बीमारी हो जाती है तो आप बीमार तो पड़ते हैं, लेकिन आप उस बीमारी में नहीं बदल जाते। यदि आपको खसरा हो जाता है तो आप कुछ समय के लिए खसरा नहीं बन जाते, बल्कि बीमारी, खसरा व्यक्ति को बीमार बनाती है। तो उसी तरह किसी अशुद्ध चीज को छूने से आप धार्मिक रूप से अशुद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन यह आपको उस विशेष अशुद्धता के गुण नहीं देता जिसे आपने छुआ था। आप उस अशुद्ध चीज में नहीं बदल जाते। यदि आप किसी मृत शरीर को छूते हैं तो आप स्वयं एक मृत शरीर नहीं बन जाते, लेकिन उस मृत शरीर को छूने से आप अशुद्ध हो जाते हैं, और इसलिए आप अशुद्ध हो जाते हैं क्योंकि उस मृत शरीर की अवस्था अशुद्ध थी, और अशुद्धता का परिणाम यह है कि आपको पवित्रता की उपस्थिति में रहने से रोक दिया जाता है। अशुद्धता अशुद्धता लाती है जो उस वस्तु या व्यक्ति को अशुद्ध बनाती है। स्वच्छ और शुद्ध, अशुद्ध और अपवित्र के बीच सूक्ष्म अंतर को जानना तथा मलिनता से उनके संबंध को जानना हमारे लिए बहुत सहायक हो सकता है जब हम लैव्य व्यवस्था के शेष भाग का अध्ययन करते हैं तथा नए नियम का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें अनेक अवसरों पर मलिनता की बात की गई है। आइए अब लैव्य व्यवस्था 12 पर हैं। लैव्य व्यवस्था 12 पूरा पर हैं। अध्याय 12 संक्षिप्त और सीधे मुद्दे पर है। ये एक नई मां के साथ साथ नवजात शिशु की धार्मिक स्थिति से संबंधित है और यह हमें बताता है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध यदि यह एक लड़का है तो मां की अशुद्धता कुल 40 दिनों तक रहती है। एक लड़की के लिए अशुद्धता की अवधि दोगुनी होकर 80 दिन हो जाती है। दोनों लिंगों के बीच समय की अवधि में अंतर के लिए बिल्कुल भी कोई कारण नहीं दिया गया है और हमें इस अंतर के लिए शास्त्र में कहीं भी सीधा उत्तर नहीं दिया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि अनुष्ठानिक अशुद्धता की उन अवधियों को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण जो लड़कों के लिए 7 दिन और लड़कियों के लिए 14 दिन का होता है, लेकिन दूसरा चरण पहले से थोड़ा अलग होता है। दूसरे चरण के साथ पहले 7 या 14 दिनों की तुलना में थोड़ी कम अशुद्ध स्थिति आती है और कम अशुद्धता का यह दूसरा चरण लड़के के लिए 33 दिन और लड़की के लिए 66 दिन का होता है। ध्यान दें कि 33+7=40 और 66+60। 14=62, 40 और 62 बच्चे के जन्म के बाद अशुद्धता के दिनों की कुल संख्या है। 7 या 14 दिनों का पहला चरण उसी तरह की अशुद्धता के रूप में वर्णित किया गया है जैसी उस महिला के लिए होती है जो अपने मासिक धर्म में प्रवेश कर चुकी होती है। इस चरण के दौरान वह अपने पति के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रख सकती है और अपने मासिक धर्म के दौरान वह जिस किसी भी चीज पर बैठी या लेटी है वह अशुद्ध हो गई मानी जाती है, और किसी भी कारण से अशुद्ध अवस्था में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह उसे किसी भी पवित्र चीज से अलग रहना चाहिए। मतलब है कि वह मंदिर में बलि नहीं चढ़ा सकती है, न ही किसी पवित्र चीज को छू सकती है। हम इस बारे में अध्याय 15 में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे, लेकिन नई मां द्वारा प्रसारित की जाने वाली अशुद्धता
बहुत गंभीर प्रकृति की नहीं होती है। आमतौर पर यह वस्तु या व्यक्ति जो अशुद्ध हो गया है वह केवल सूर्यास्त तक ही उस अवस्था में रहता है, यानी दिन के अंत तक और एक नए दिन की शुरुआत तक।
हमारी तर्कसंगत तार्किक सोच तुरंत पूछती है, एक नई मां को अशुद्ध क्यों माना जाना चाहिए? क्योंकि क्यों अधिकांश बाइबल इब्रानी सोच के लिए अप्रासंगिक है, और चूंकि हम इसके बजाय पैटर्न की खोज में हैं और सबूतों और वैज्ञानिक या तार्किक कारणों की एक श्रृंखला नहीं है, इसलिए हम क्यों के सबसे करीब इस तथ्य में पहुंच सकते हैं कि एक महिला के जन्म देने का पैटर्न अशुद्ध हो जाना और फिर शुद्धता प्राप्त करना महिला के मासिक धर्म चक्र से निकटता से जुड़ा हुआ है। और ऐसा लगता है कि नई मां द्वारा अनुबंधित अशुद्धता के कारण का पूरा मामला बच्चे के बारे में इतना नहीं है, बल्कि रक्त के संबंधित निर्वहन के बारे में है, जैसा कि पद 7 में कहा गया है, लैव्य व्यवस्था 12 का 7, और वह इसे यहोवा के सामने चढ़ाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह अपने रक्त स्राव से शुद्ध हो जाएगी। यह उसके लिए नियम है जो एक बच्चे को जन्म देती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की।
तो यह रक्त का प्रवाह है जिसने उसे अशुद्ध बना दिया है और जिससे उसे शुद्ध होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उसने दुनिया में नया जीवन लाया है। इस रक्त के प्रवाह को स्राव भी कहा जाता है, और हम निम्नलिखित पाठों में यह जानने जा रहे हैं कि पुरुषों या महिलाओं से स्राव कुछ मामलों में व्यक्ति को धार्मिक रूप से अशुद्ध बनाने का कारण बनता है। अशुद्ध, और जैसे बच्चे के जन्म के समय रक्त और तरल पदार्थ का स्राव होता है, वैसे ही महिला का मासिक चक्र भी होता है। इसलिए हम दोनों के बीच पैटर्न संबंध का कारण देख सकते हैं, क्योंकि यह महिला को अशुद्ध बनाता है।
इस बात के बारे में कई रोचक सिद्धांत हैं कि एक ओर यहोवा ने मानव जाति को फलदायी होने और गुणा करने का निर्देश दिया और लगातार उन महिलाओं की महिमा की जो कई बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन जो बांझ हैं उन्हें दुखी घोषित करती हैं, और दूसरी ओर यह घोषित किया कि सामान्य मासिक प्रक्रिया जो एक महिला को गर्भवती होने के लिए तैयार करती है और उस नए बच्चे को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया, दोनों के परिणाम स्वरूप उस महिला को अशुद्ध अवस्था में डाल दिया जाएगा, धार्मिक रूप से अशुद्ध और यहोवा के पास जाने में असमर्थ। मैं आपके साथ उन सिद्धांतों का पता लगाने के लिए समय भी नहीं निकालना चाहता, क्योंकि उन पर विचार करने के बाद वास्तविकता यह है कि वे केवल पुरुषों के सिद्धांत हैं जो इन बाइबल शुद्धता कानूनों को वैज्ञानिक कारणों और स्वास्थ्य औचित्यों, प्राचीन वर्जनाओं और इस तरह से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें से किसी पर भी इन कानूनों के अस्तित्व के कारण के रूप में कभी भी शास्त्र में चर्चा नहीं की गई है।
पद 3 में ही हमें यह महत्वपूर्ण नियम मिलता है कि जन्म के 8वें दिन ही नर बच्चे का खतना किया जाना चाहिए। खतना उस वाचा का संकेत था जो यहोवा ने अब्राहम को दी थी, और इसीलिए कहा जाता है कि यह बच्चा उस वाचा के अधीन है। जाहिर है 8वें दिन का चुनाव मां की धार्मिक शुद्धता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लड़के के जीवन का 8वां दिन नई मां की धार्मिक अशुद्धता के दूसरे चरण का पहला दिन था, एक छोटी सी अशुद्धता। 8वें दिन खतना करने के साथ काफी प्रतीकात्मकता जुड़ी हुई है, लेकिन हम इसे किसी और समय पर संबोधित करेंगे।
अनुष्ठान अशुद्धता के इस दूसरे चरण के दौरान, जो लड़के के लिए प्रसव के 8वें दिन 7 दिन बाद या लड़की के लिए 14 दिन बाद 15वें दिन शुरू होता है, और लड़के के लिए 33 दिन या लड़की के लिए 66 दिन तक चलता है, पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मां थोड़ी सी भी अशुद्धता में रहती है, इसलिए यह पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं कर सकती और न ही किसी पवित्र चीज को छू सकती है। अब पवित्र या पवित्र चीज की सटीक परिभाषा समय के साथ और एक रब्बी से दूसरे रब्बी की शिक्षाओं में थोड़ी भिन्न हुई है। आम तौर पर पवित्र चीज में वह सब कुछ शामिल होता है जो मंदिर में बलि के लिए चढ़ाया जाने वाला होता है।
इसलिए जब नई मां एक आम इसराइली थी और नियमित बलिदान अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए बाध्य भी, तो अशुद्धता की उस अवधि के दौरान वह किसी भी बलि पशु या भोजन या प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं रख सकती थी। लेकिन जब नई मां एक पुजारी की पत्नी थी तो उसे बलिदान से लिया गया पुजारी का हिस्सा खाने से भी रोक दिया गया था, जिसे वह अन्यथा पाने की हकदार थी। याद रखें, पुजारी और उनके परिवारों के लिए प्राथमिक भोजन का स्रोत आम लोगों द्वारा चढ़ाए गए पशु और अनाज के बलि के कुछ निर्दिष्ट हिस्से थे। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि उसे दैनिक भोजन से वंचित किया गया था या इस दौरान उसे कम खाना पड़ता था, बल्कि वह जो खाना खाती थी वह पहले बलि के हिस्सों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पुजारियों के पास पैसा था, इसका प्राथमिक स्रोत कुछ निश्चित क्षतिपूर्ति प्रसादों से आता था, जिसके लिए जानवरों के अलावा पैसे देने की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सक्षम थे। अशुद्धता की 40 या 80 दिन की अवधि पूरी होने के बाद नई मां को अपनी पवित्रता पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंदिर में दो प्रकार के बलिदान लाने की आवश्यकता होती है, ओलाह और हत्तात, यानी एक होम बलि और एक शुद्धिकरण बलिदान। मैं इन दो प्रकार के बलिदानों की सभी प्रक्रियाओं पर फिर से विचार नहीं करने जा रहा हूं। यदि आप इनके बारे में विस्तृत विवरण चाहते हैं तो आप लैव्य व्यवस्था में हमारे पिछले पाठों का संदर्भ ले सकते हैं। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा कि ओलाह बलिदान के साथ साथ यह लगभग स्वचालित था कि मिनचाह बलिदान भी चढ़ाया जाए, इसलिए वास्तव में नई मां से 3 बलिदान की आवश्यकता थी। हत्तात बलिदान के संबंध में, इस प्रकार के बलिदान का यह विशेष उद्देश्य नई मां के अनुष्ठान अशुद्धता समारोहों का अंत इस कारण का एक हिस्सा है कि मैं हत्तात को अधिक सामान्य रूप से अनुवादित पाप बलिदान के बजाय शुद्धिकरण बलिदान कहने का समर्थन करता हूं। हत्तात के लिए पाप बलिदान का अनुवाद हमें इसके उद्देश्य के बारे में गलत धारणा देता है कि किसी प्रकार का पाप किया गया है और इसलिए इसका प्रायश्चित किया जाना चाहिए। जैसा कि मुझे लगता है कि आप समझने लगे हैं, अशुद्धता, अनुष्ठान अशुद्धता में आवश्यक रूप से पाप शामिल नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नई मां पर कोई ऐसा पाप नहीं लगाया जाता है जो उसे अशुद्ध बनाता हो। गर्भवती होना और जन्म देना किसी भी तरह से पाप नहीं था, बल्कि यह प्रसव के साथ होने वाला प्राकृतिक और सामान्य रक्त स्राव है जो उसे अशुद्ध बनाता है। हत्तात को आमतौर पर अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में अंतिम कार्य के रूप में किया जाता है, जो एक अशुद्ध व्यक्ति को अनुष्ठान शुद्धता की स्थिति में वापस ले जाता है और केवल कभी कभी ही कुछ परिभाषित पाप अनुष्ठानिक अशुद्धता का कारण होता है जिसका उपचार किया जा रहा है। मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण लगेगी, और यह हमारे प्रत्येक जीवन में यीशु के प्रायश्चित कार्य के कुछ पहलुओं को समझने में भी उपयोगी हो सकती है। हमने कुछ समय पहले बात की थी कि अधिकांश चीजों के लिए सामान्य अवस्था स्वच्छ होती है, धार्मिक रूप से शुद्ध, अपवाद भौतिक दुनिया में। वे जानवर और अन्य चीजें होंगी जिन्हें यहोवा ने अपने रहस्यमय कारणों से अशुद्ध घोषित किया है। मानव जाति, गैर यहूदी, कुछ खास व्यवहार जैसे वेश्यावृत्ति में शामिल होकर अशुद्ध हो सकती है। यहां ईश्वर सिद्धांत यह है कि सामान्य रूप से साफ चीजों को अपवित्र किया जा सकता है और उन्हें अनुष्ठानिक अशुद्धता की स्थिति में गिराया जा सकता है, अशुद्धता अशुद्ध कार्य करने या अशुद्ध वस्तुओं को छूने से, या साफ चीजों को ईश्वर के आदेश से पवित्र किया जा सकता है, ऊपर उठाया जा सकता है और पवित्र बनाया जा सकता है। लेकिन किसी भी अशुद्ध चीज को सीधे पवित्रता की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, न ही पवित्रता की उपस्थिति में किसी अशुद्ध चीज को अनुमति दी जा सकती है। मैं इस पर स्पष्ट होना चाहता हूं क्योंकि यह पूरी तरह से नया नियम पर भी लागू होता है। एक चीज जो अशुद्ध है उसे अंततः पवित्रता की स्थिति में लाया जा सकता है जब इसे पहले शुद्ध की मध्यवर्ती स्थिति में लाया जाता है। यह सिर्फ इतना है कि एक चीज जो अशुद्ध अवस्था में है उसे सीधे उसकी वर्तमान अशुद्धता की स्थिति से पवित्र घोषित नहीं किया जा सकता है। एक अशुद्ध चीज तब तक पवित्र बनने के योग्य नहीं है जब तक कि वह पहले शुद्ध ना हो जाए। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें लेव्य व्यवस्था 12 में मिलता है। यहोवा द्वारा घोषित किया जाता है कि नई मां बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अशुद्ध अवस्था में होती है। वह अपने परिवार या अपने धार्मिक समुदाय की नियमित पूजा पद्धतियों में भाग नहीं ले सकती या उसका हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि वह अशुद्ध है और सभी अशुद्धता को पवित्रता से अलग रखा जाना चाहिए। इसलिए यहोवा द्वारा समय का एक खंड निर्धारित किया गया है कि उसे अपनी धार्मिक अशुद्धता समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक लड़के को जन्म देने के लिए 40 दिन, एक लड़की को जन्म देने के लिए 80 दिन। इस समय अवधि को छोटा करने का कोई तरीका नहीं है, और इस समय अवधि के अंत में, जैसा कि हम बाद के अध्यायों में देखेंगे, नई मां एक धार्मिक स्नान में शामिल होगी। उसे मिकवा में डुबोया जाएगा, जो आधिकारिक तौर पर उसकी अशुद्धता की अवधि के अंत को चिह्नित करता है। समय बीत जाने के बाद और फिर उसे डुबोए जाने के बाद वह शुद्ध हो जाती है, लेकिन वह अभी तक पवित्रता की उस स्थिति में वापस नहीं आई है जिसका उसने जन्म देने से तुरंत पहले आनंद लिया था। प्रतीक्षा, अवधि और मिकवा में डुबकी के बाद वह शुद्ध हो जाती है, लेकिन अभी तक वह परमेश्वर के साथ नए सिरे से संबंध में नहीं आ पाती है। बलिदान उसे पूरा करते हैं। तो प्रगति पर ध्यान दें, नई मां अशुद्ध है और परिणाम स्वरूप उसकी पवित्रता की स्थिति अस्थाई रूप से निलंबित है। ईश्वर द्वारा सभी इसराइलियों को दी गई पवित्रता की स्थिति में वापस आने के लिए उसे पहले अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि एक अशुद्ध व्यक्ति के रूप में वह पवित्रता मंदिर की उपस्थिति में नहीं रह सकती। एक बार जब वह फिर से शुद्ध हो जाती है तो अब उसे बलिदान लाने का अधिकार है, जो उसे अपनी पवित्र स्थिति को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए हमने सीखा है कि यह दुनिया में नया जीवन लाने की वजह से नहीं था, बच्चा उसकी अशुद्धता का कारण नहीं था, बल्कि जैसा कि पद 7 में कहा गया है, यह जन्म प्रक्रिया से रक्त का निर्वहन या प्रवाह था जो अशुद्धता लाया, और हमने पाया कि तो रहा। नई मां के लिए अशुद्धता के प्रकार और स्तर की तुलना उस महिला से करता है जो अपने मासिक चक्र में है। दोनों मामलों में यह एक निश्चित अवधि के लिए अशुद्ध होती है और उस समय बीतने तक पवित्रता की उपस्थिति में रहने से रोक दी जाती है और उसे विसर्जित कर दिया जाता है। अब मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं चाहे जितना भी प्रयास करूं, आध्यात्मिक रहस्य को समझाने के लिए केवल शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं है जो एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू करने के लिए मैं सबसे मजबूत संभव शब्दों में दोहराना चाहता हूं कि अशुद्धता वह स्थिति नहीं है जिसका सामना अब यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति करता है। विश्वासियों के रूप में आप हर महीने या बच्चे के जन्म के दौरान अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध नहीं होती हैं। मसीह में आपके विश्वास के परिणाम स्वरूप आप पवित्र और स्वच्छ रहती हैं। वास्तव में, जैसा कि मैंने समझाया है, पवित्र शास्त्र से मैं जो कुछ भी पता लगा सकता हूं उसके अनुसार कोई भी विश्वासी कभी भी अशुद्ध स्थिति में नहीं आ सकता है जब तक कि वह विश्वासी है, क्योंकि यीशु का प्रायश्चित करने वाला रक्त हर पल काम कर रहा है। समय और स्थान की हमारी लौकिक दुनिया में क्रूस पर मसीह के बलिदान को एक बार और हमेशा के लिए कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह एक बार की घटना थी। तोरा और पुराने नियम और बलिदान प्रणाली के संदर्भ में कोई यह कह सकता है कि उनके अपने शरीर की एक ही बलिदान ने उन सभी मामलों को संतुष्ट कर दिया जहां प्रायश्चित के लिए अनुष्ठानिक बलिदान की आवश्यकता थी। फिर भी आध्यात्मिक दुनिया में जहां समय और स्थान नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उनका बलिदान जारी है। यह दूसरा और दूसरा और दूसरा नहीं है, ये वही है, जारी, अंतहीन, शाश्वत। अब पाप कम से कम बुरे व्यवहार या अवज्ञा या लैव्य व्यवस्था के नियमों और विनियमों के उल्लंघन के अर्थ में यहां नई मां के लिए अनुष्ठान अशुद्धता के मामले में स्पष्ट रूप से काम नहीं करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम हर मामले में पाप करने को अशुद्ध होने के बराबर नहीं मान सकते, फिर भी अशुद्धता पाप से जुड़ी हुई है। मैं समझाता हूं जिस तरह से कुछ गैर विश्वासी अद्भुत देखभाल करने वाले, प्यार करने वाले लेकिन बचाए नहीं गए लोग लगभग पूर्ण जीवन जीते हुए प्रतीत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गांधी, एक आदर्श जीवन जिसे मैं कभी कभी जीना चाहता हूं। वास्तव में भले ही उन्होंने कोई पाप न किया हो लेकिन आदम और हव्वा के साथ उनके रिश्ते के कारण उनका स्वभाव पापी है। ईसाई इसे हमारा पाप स्वभाव कहते हैं और जिस तरह से बुरा व्यवहार पिता के खिलाफ पहचाने जाने योग्य अपराधों का आयोग का प्रायश्चित किया जाना चाहिए उसी तरह हमारे पाप स्वभाव का भी प्रायश्चित किया जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मासूम बच्चे जिन्हें परमेश्वर के विरुद्ध अवज्ञा करने का अवसर भी नहीं मिला है वे अभी भी पापी अवस्था में हैं क्योंकि वे अपने स्वभाव में हमारे समान सांसारिक पूर्वजों आदम और हव्वा के पतन के परिणाम लेकर चलते हैं। ये इस अर्थ में है कि पाप और अशुद्धता का मिलन होता है। हमारा पापी स्वभाव अंततः अशुद्धता उत्पन्न करेगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपने लिए यीशु के प्रायश्चित कार्य पर भरोसा करें।
मसीह से पहले यह ओलाह बलिदान था जिसे हम आम तौर पर होम बलि कहते हैं, जिसे पाप पूर्ण व्यवहार या अवज्ञा के कृत्यों के लिए प्रायश्चित करने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि इसराइलियों के पापी और इसलिए अशुद्ध स्वभाव के लिए। यदि आप हमारे पिछले पाठों को याद करें तो यह लैव्य व्यवस्था में था कि हमने पहली बार ओलाह और मिंचाह बलिदानों पर चर्चा की थी और वास्तव में इन बलिदानों का यहोवा के विरुद्ध अपराध करने से कोई लेना देना नहीं था। जब तक हम हत्तात, आशम और जेवा बलिदानों तक नहीं पहुंचे तब तक तोरह ने परमेश्वर के विरुद्ध पापों और पाप द्वारा उत्पन्न अशुद्धता से निपटना शुरू नहीं किया। और ध्यान दें कि यह ओलाह बलिदान है जो लैव्य व्यवस्था 12 में नई मां के लिए आवश्यक है, एक बलिदान जो उसके पापी स्वभाव के लिए प्रायश्चित करने से संबंधित है। और फिर बेशक हत्तात की भी जरूरत है क्योंकि इसका संबंध शुद्धिकरण से है, यानी यह वह कीमत है जो अशुद्ध से स्वच्छ अवस्था में जाने के लिए चुकाई जाती है, अशुद्ध से शुद्ध की ओर। यीशु हमारे अशुद्ध से स्वच्छ हत्तात की तरह और स्वच्छ से पवित्र ओलाह की तरह की ओर जाने के लिए कीमत चुकाते हैं।
हमने ये भी देखा कि नई मां को उसकी अशुद्धता से वापस लाकर स्वच्छता की स्थिति में लाने के लिए तथा वहां से पवित्रता की पुनर्स्थापित स्थिति में लाने के लिए एक सावधानी पूर्वक व्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पहला कदम था जरूरी समय का इंतजार करना, लड़के के लिए 40 दिन और लड़की के लिए 80 दिन। दूसरा कदम, जिसे हम आगे के अध्यायों में देखेंगे, एक अनुष्ठानिक स्नान था, मिकवा में विसर्जन। इससे वह अनुष्ठानिक अशुद्धता, अस्वच्छता की अपवित्र अवस्था से वापस अनुष्ठानिक शुद्धता, स्वच्छता की अवस्था में आ गई।
और अब जब वह फिर से शुद्ध हो गई है तो वह पवित्र बनने के योग्य है। इस पवित्र स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे प्रायश्चित के 2, वास्तव में 3 बलिदान चढ़ाने होंगे, ओला और हत्तात। यदि बलिदान ठीक से किए जाते हैं तो वह पवित्र हो जाती है और यहोवा को स्वीकार्य हो जाती है और समूह में फिर से शामिल हो जाती है। समूह इसराइल है एक पवित्र व्यक्ति के रूप में, इसलिए मेरी पवित्रता की सीरही के सादृश्य में वह संभवतः पवित्रता की स्थिति में ऊपरी पायदान पर अपनी गर्भावस्था में प्रवेश करती है। प्रसव के बाद वह उस सीरही से नीचे गिरकर अशुद्धता की स्थिति में चली जाती है। अब उसका लक्ष्य उस सीरही पर वापस चढ़ना है, अशुद्ध से स्वच्छ और फिर स्वच्छ से पवित्र।
पवित्र बनने के चरण आज हमारे साथ भी ऐसे ही हैं। सबसे पहले जब हम जीवन को स्वच्छ रूप से शुरू करते हैं तो हमारा पापी स्वभाव हमें अनिवार्य रूप से अशुद्ध व्यवहार में ले जाएगा और इस प्रकार हमें अपनी अशुद्धता से बाहर निकलकर स्वच्छ अवस्था में आना चाहिए। जैसा कि संत पौलुस समझाते हैं इफिसियों 5:5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि कोई व्यभिचारी, न अशुद्ध व्यक्ति, न लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक है मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई उत्तराधिकार नहीं पाता। और फिर 2 कुरिन्थियों 6:17 में इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यही वह समय है जब हम यीशु को हमें बुलाते हुए सुनते हैं
और यह निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य बनने जा रहे हैं। जो परमेश्वर के विरुद्ध है उसे त्यागते हुए यह हमें दुनिया भर की स्थिति से हटा देता है और हमें इज़राइल और उसकी वाचाओं से जोड़ता है। जैसा कि मैंने आपके साथ विस्तार से चर्चा की है, यह आध्यात्मिक सच्चा इज़राइल है, न कि भौतिक सांसारिक इज़राइल। एक बार जब हम यीशु जीवित जल के स्रोत के रूप में द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, तो हम उनके रक्त द्वारा पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य बन सकते हैं। अब चूंकि यह एक आध्यात्मिक मामला है, यह सब हमारे लिए एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हम अशुद्ध से स्वच्छ पवित्र तक इन अलग अलग और विशिष्ट चरणों को समझ सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लैव व्यवस्था में देखा है। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आध्यात्मिक सिद्धांत हमें यहाँ अध्याय 12 में और 13 में अन्य स्थानों पर सिखाया गया है। कैसे कोई अशुद्ध से पवित्र बन सकता है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है जिसे हम देख और समझ सकते हैं, जो मैं मानता हूँ 13 का प्राथमिक उद्देश्य है, हमें कुछ अनंत आध्यात्मिक सिद्धांतों को देखने, अवधारणा बनाने और समझने की अनुमति देना। इनमें से प्रमुख है कि पाप क्या है और पवित्रता क्या है, एक तरह से जिसे हमारा सीमित शारीरिक मन समझ सकता है। अब मुझसे यह मत पूछिए कि प्रत्येक व्यक्ति में यह सब कैसे होता है, या वह सटीक क्षण कब आता है जब हम अशुद्ध से शुद्ध और फिर शुद्ध से पवित्र की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग है, लेकिन शायद नहीं। फिर भी यह प्रक्रिया हमेशा एक जैसी रही है, और हमें केवल शुद्ध से पवित्र और पवित्र बनाने के लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता है, जैसा कि हमेशा से रहा है। ईसा से पहले के समय में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बार बार किए जाने वाले विशिष्ट बलिदानों की एक श्रृंखला थी। यीशुआ के आगमन के बाद से यह उसका रक्त है जिसकी आवश्यकता है, जानवरों के रक्त की नहीं। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी खबर यह है कि पवित्रता की कोई और सीढ़ी नहीं है जिस पर चढ़ना, गिरना और फिर से ऊपर चढ़ना है। एक आस्तिक पवित्र रहता है, और आमतौर पर कहा जाए तो वह कभी भी अशुद्धता अशुद्धता की स्थिति में नहीं हो सकता। भले ही हम अशुद्धता के संपर्क में क्यों ना आए, हम निश्चित रूप से विद्रोह की स्थिति में हो सकते हैं, जो मूल रूप से यहोवा की अवज्ञा का एक निरंतर समय है। लेकिन यह भी हमें अशुद्ध नहीं बनाता है, या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी पवित्र स्थिति को नहीं खोते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यह इसे खोने का कारण बन सकता है। हालांकि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अवज्ञा से आम तौर पर हमें अपने उद्धार की कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे प्रभु के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। अगर हम उससे प्रेम करो तो हम कभी भी उसकी अवज्ञा क्यों करना चाहेंगे। जैसा कि संत पौलुस ने रोमियो 6:1 में कहा है, तो फिर हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे। जबकि हम बाद में अशुद्धता की स्थिति से शुद्ध होने की प्रक्रिया के पहलुओं को कवर करेंगे, मुझे एक बात बतानी है जिसे मैं बाद में फिर से बताऊंगा। पानी शुद्ध करने वाला एजेंट है, जबकि रक्त प्रायश्चित करने वाला एजेंट है। यह पानी है जिसका उपयोग विसर्जन किसी अशुद्ध व्यक्ति या चीज को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह रक्त है जो किसी साफ व्यक्ति या चीज को पवित्र बनाता है। इसीलिए हमें बताया गया है कि जब रोमन सैनिक ने यीशु के बेजान शरीर में भाला मारा तो खून के साथ पानी भी बह निकला। यीशु ने खुद को जीवित जल कहा। शुद्ध करने के लिए जीवित जल की आवश्यकता थी, प्रायश्चित करने के लिए रक्त की आवश्यकता थी। हम ज्यादातर अपने उद्धारकर्ता के खून के बारे में गाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका खून हमारे लिए किसी काम का नहीं होता अगर उसने आध्यात्मिक अर्थ में पहले हमें अपने जीवित जल में डुबोया ना होता। नए नियम में उसके शरीर से बहे पानी और खून के बारे में वह छोटा सा कथन यहूदियों के लिए बहुत मायने रखता था जिन्होंने इसे देखा, क्योंकि वे पानी और खून दोनों की जरूरत को समझते थे। ठीक है, यह अशुद्धता और प्रसव के संबंध में है। लैव्य व्यवस्था 13 और 14। अब त्वचा रोगों के परिणाम स्वरूप अनुष्ठान अशुद्धता को संबोधित करते हैं और यह जितना अजीब लग सकता है, ये अध्याय निर्जीव वस्तुओं के त्वचा रोगों को भी संबोधित करते हैं, विशेष रूप से कपड़ों और घरों के।
तो आइए हम लैव्य व्यवस्था 13 को PRH कर अनुष्ठान शुद्धता के बारे में सीखना जारी रखें।
लैव्य व्यवस्था अध्याय 13 1-8 पर हैं। अध्याय 13 और 14 काफी लंबे और जटिल हैं और विस्तृत निर्देशों से भरे हुए हैं, इसलिए हमें इस चीज को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा जिन्हें हम पचा सकें। अध्याय 13 की आयतें 1-46 मनुष्यों पर त्वचा रोगों से संबंधित हैं। आयतें 47-58 चमड़े और कपड़ों पर तथा कथित त्वचा रोगों से संबंधित हैं। जब हम अध्याय 14 पर पहुंचेंगे तो हम घरों पर त्वचा रोगों से निपटेंगे। हालांकि हमारे उद्देश्यों के लिए हम इसे अध्याय 13 के पहले 8 पदों से शुरू करते हुए और भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां हमें पुजारियों के लिए निर्देश मिलते हैं कि कैसे यह निर्धारित किया जाए कि रोगी के सामान्य लक्षण गंभीर प्रकृति के हैं या कुछ क्षणिक हैं जो इतने गंभीर नहीं हैं, और संभवतः पीड़ित व्यक्ति को कोई और समस्या उत्पन्न किए बिना या उसके समुदाय के लिए कोई खतरा उत्पन्न किए बिना ठीक हो जाएंगे।
यहां हम देखते हैं कि पुजारी एक नई भूमिका निभाते हैं जो अनुष्ठानों के अधिकारी, यहोवा की पवित्रता के संरक्षक और शिक्षकों के रूप में उनके पहले से मौजूद कर्तव्यों की सूची में जुड़ती है। उनकी नई भूमिका में एक चिकित्सा पहलू भी है, क्योंकि उन्हें त्वचा रोग का निदान करना होगा और यह तय करना होगा कि व्यक्ति को संगरोध किया जाना चाहिए या नहीं, और उन्हें यह भी तय करना होगा कि बीमारी कब पूरी तरह से ठीक हो गई है और व्यक्ति को समाज में वापस आने की अनुमति कब दी जा सकती है। बाद में पुजारी बहुत विस्तृत शुद्धिकरण अनुष्ठानों को भी निर्धारित करेंगे और उनकी अध्यक्षता करेंगे। जब स्मरण करें कि जजारात को व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति की बाहरी अभिव्यक्ति माना जाता था कि कुछ त्वचा रोग सभी त्वचा रोग नहीं, आपकी गुप्त आंतरिक अशुद्धता की स्थिति जो अब तक केवल परमेश्वर को ही ज्ञात थी को सभी के देखने के लिए स्पष्ट करने का प्रभु का तरीका था।
इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि पुजारियों ने डॉक्टर या उपचारक की भूमिका नहीं निभाई। वे किसी व्यक्ति को त्वचा रोग से छुटकारा पाने का तरीका नहीं बताते थे, उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करते थे, न ही उन्हें खुजली, रक्तस्राव या दर्द को कम करने के लिए कोई औषधि, इलाज या दवा या बाम देते थे। वे पीड़ितों को यह नहीं बताते थे कि उन्हें अपने त्वचा रोग से कैसे निपटना है, बल्कि उनका काम बस यह निर्धारित करना था कि क्या उस व्यक्ति को वास्तव में कोई त्वचा रोग है, यह किस सामान्य श्रेणी में आता है और क्या उस व्यक्ति को समूह से अलग करने की आवश्यकता है या नहीं, और जाहिर है कब, यदि कभी वह व्यक्ति अपने समुदाय में फिर से शामिल हो सकता है, और ऐसा होने के लिए अनुष्ठान के दृष्टिकोण से क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। वास्तव में यह नई भूमिका बस उसी का विस्तार थी जो उनके पास पहले से थी, स्वच्छ और अशुद्ध के बीच अंतर करना।
बाइबल में जिसे आम तौर पर चर्म रोग के तौर पर अनुवादित किया गया है वह इब्रानी भाषा में तजारात है।
दुर्भाग्य से अधिकांश बाइबल में अक्सर तजारात के लिए कुष्ठ रोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुष्ठ रोग, या जिसे आज चिकित्सा समुदाय में हैंसेन रोग कहा जाता है, वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि लैव्य व्यवस्था में वर्णित है। मुझे बाइबल की कई फिल्मों से एक और रूढ़िवादी और गलत दृश्य को नष्ट करने से नफरत है। ओह, ये सच नहीं है, वास्तव में मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है, लेकिन कुष्ठ रोग बहुत दुर्लभ था। मिस्र में उनके प्राचीन सार्वजनिक अभिलेखों की विशाल मात्रा या खोदे गए और जांचे गए हजारों हजारों कंकालों और ममियों से कोई सबूत नहीं मिलता है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी से पहले मिस्र में भी सच्चा कुष्ठ रोग अपना भयानक रूप दिखा सकता था। और जबकि इस बात के सबूत हैं कि यह कनान और फिलिस्तीन के क्षेत्र में इसराइलियों के समय में मौजूद था, यह वास्तव में दुर्लभ था, इसलिए बरी कुष्ठ रोगियों की बस्तियों की मानसिक तस्वीर जहां लोगों को नियमित रूप से निर्वासित किया जाता था बस वैसी नहीं है, और न ही कोई पुजारी अक्सर किसी कुष्ठ रोगी से मिलता था। यह नया नियम ग्रीक शब्द लेप्रा को समझने में हुई गलती से हुआ, जिसे इब्रानी शब्द तजारात का अनुवाद करने के लिए चुना गया था। लेप्रा को अंततः अंग्रेजी में कुष्ठ रोग के रूप में बदल दिया गया, और कुष्ठ रोग निश्चित रूप से सबसे भयानक बीमारियों में से एक था। चूंकि कुष्ठ रोग दिखने में बहुत ही विचित्र है और इसके परिणाम घातक हैं, इसलिए यह बाइबल की कहानियों और उपदेशों के लिए बहुत बढ़िया विषय बन गया। इसलिए तजारत अनुवाद कुष्ठ रोग के रूप में किया जाना अटक गया। भले ही धर्मशास्त्रीय और साथ ही चिकित्सा समुदाय ने बहुत पहले ही यह निर्धारित कर लिया था कि बाइबल में जिस चीज का उल्लेख किया जा रहा था उसका कुष्ठ रोग से बहुत कम या कोई लेना देना नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि यूनानियों के पास उस चीज के लिए एक सटीक शब्द था जिसे हम आमतौर पर कुष्ठ रोग या अधिक सटीक रूप से हैंसेन की बीमारी के रूप में सोचते हैं, एलिफेंटियासिस। और स्वाभाविक रूप से आपको नया नियम में ग्रीक शब्द एलिफेंटियासिस नहीं मिलेगा क्योंकि यह वह नहीं था।
इसके अलावा तजारात कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है, बल्कि यह त्वचा रोगों और त्वचा संबंधी असामान्यताओं की एक पूरी श्रृंखला के लिए एक सामान्य शब्द है जो कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को धार्मिक रूप से अशुद्ध अशुद्ध बना देता है। वर्तमान आम सहमति यह है कि लैव्य व्यवस्था में वर्णित त्वचा रोग सोरायसिस, फेवस और लूकाउमा से अधिक मिलते जुलते हैं। सोरायसिस त्वचा की एक गैर संक्रामक परतदार बीमारी है जो त्वचा के एक बहुत छोटे से हिस्से से लेकर लगभग पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। सोरायसिस के छिलके आमतौर पर एक चमकदार सफेद रंग के होते हैं, लेकिन अगर कोई इस स्थिति से झुरी सामान्य लगातार खुजली के कारण उन्हें खरोंचता है तो अंतर्निहित कोशिकाएं अधिक लाल रंग की होती है।
व्यावहारिक दृष्टि से सोरायसिस ऐसी बीमारी नहीं है जो व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती हो, न ही इसे घातक माना जाता है, लेकिन गंभीर स्थिति में यह काफी दुर्बल करने वाली हो सकती है।
हालांकि फेवस अधिक गंभीर है। यह एक फंगस है जो शरीर के बालों वाले क्षेत्रों पर हमला करता है, आमतौर पर केवल खोपरी पर। फेवस काफी संक्रामक है और क्योंकि यह त्वचा की सबसे गहरी परतों को प्रभावित करता है, साथ ही यह बालों के रोमों के साथ साथ रोगग्रस्त क्षेत्र पर गंजापन के अलावा स्थायी विकृति भी छोड़ सकता है। लूकोर्मा एक त्वचा रोग है जिसके कारण त्वचा अपना प्राकृतिक रंग खो देती है और सफेद हो जाती है। यह आमतौर पर पैच के रूप में होता है और केवल त्वचा की ऊपरी परतों में मौजूद पिगमेंट को प्रभावित करता है।
यह सूची संपूर्ण नहीं है, लेकिन यह हमें तजारात के स्वरूप के बारे में एक अच्छा विचार देती है। इससे हम यह देखते हैं कि तजारात के ये विभिन्न रूप आम तौर पर घातक नहीं होते हैं, न ही आम तौर पर रोगी के समग्र स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं जैसा कि कुष्ठ रोग है। आम तौर पर ये त्वचा के रोग होते हैं, हालांकि कुछ जीवन भर रह सकते हैं, लेकिन मैं इस पीड़ा को कम नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से कुछ रोग तीव्र खुजली और कुछ हद तक दर्द लाते हैं जो लोगों को पागल कर सकते हैं, और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इनमें से कुछ रोगों के कारण होने वाले शारीरिक निशान और विकृतियां हालांकि आम तौर पर गंभीर नहीं होती हैं, उन प्राचीन यहूदियों की मानसिकता के लिए हम आधुनिक लोगों की तुलना में कम महत्वपूर्ण थीं।
इसलिए जबकि निश्चित रूप से थे के बारे में ईश्वर के नियमों में एक चिकित्सा पहलू है, यह वास्तव में समुदाय को घातक बीमारियों से बचाने के बारे में नहीं है, क्योंकि थे घातक बीमारियां नहीं थी, बल्कि यह बीमार होने से ज्यादा धार्मिक शुद्धता के बारे में था। थे के परिणाम दूसरे तरीकों से विनाशकारी थे। तजारात से अशुद्ध पोषित किए गए व्यक्ति को शिविर से बाहर कर दिया जाता है, अपने परिवार और समाज से दूर और स्थिति के आधार पर शायद उसे जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया जाए, और यह निर्वासन सिर्फ जीवन साथी या बच्चों या कबीले से नहीं है। यह व्यक्ति ईश्वर से अलग हो जाता है, वह अशुद्ध है, अशुद्ध है, ईश्वर के पवित्र समुदाय में जीवन के लिए अयोग्य है, और इसलिए यहोवा द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए अयोग्य है। अगर कोई पुजारी थजारात से संक्रमित हो जाता है तो वह शिविर से बाहर भेजे जाने के दर्द और अपमान को झेलने के अलावा ईश्वर के विशेष सेवक के रूप में अपना उच्च पद खो देता है। अतः हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इब्रानियों का तजारात के प्रति भय मुख्यतः उस अशुद्धता पर केंद्रित था जो इससे उत्पन्न हुई थी, तथा इसके परिणाम स्वरूप यहोवा और परमेश्वर के लोगों से निर्धारित अलगाव हुआ।
कल्पना कीजिए मेरे ईसाई मित्रों, अगर एक दिन आप अपनी बांह पर पपरीदार दाग के साथ जागते हैं, आप अपने पादरी या रब्बी के पास जाते हैं और वह निर्धारित करता है कि यह सोरायसिस है और आपको कभी वापस ना आने के लिए कहा जाता है, कि आपको अपने परिवार और समुदाय को छोड़ देना चाहिए, कि आपको ईश्वर के परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया है, कि आपने पवित्र और बचाए जाने की अपनी स्थिति खो दी है, और जब तक सोरायसिस दूर नहीं हो जाता तब तक बहिष्कृत होना आपकी मृत्यु तक आपकी स्थायी स्थिति होगी। यहोवा के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है और आपके पास कोई सहारा नहीं है। आपकी एकमात्र उम्मीद यह है कि यह चमत्कारिक रूप से गायब हो जाए। बेशक यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, विश्वासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मसीह से पहले इब्रानियों के साथ ऐसा ही हुआ था। डरावना, भयानक, विनाशकारी, शब्दों से परे, कठोर, हम इसे अन्यथा कैसे देख सकते हैं? और यह रब्बी परंपरा नहीं थी जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, यह ईश्वर द्वारा निर्धारित निर्देश और आदेश है। अशुद्ध होना एक बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक मामला है, और ऐसा होना बंद नहीं हुआ है क्योंकि यह पवित्रता के लिए खतरा है और इसके विपरीत है। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यहोवा किसी भी कीमत पर अपनी पवित्रता की रक्षा करेगा। इस बात को हमें पवित्र शास्त्र में बार बार याद दिलाया गया है। यदि यहोवा को अपनी पवित्रता को अशुद्धता से बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करना पड़ा तो वह ऐसा करेगा। और वास्तव में हमें प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि वह बिल्कुल यही करने जा रहा है। हम अगले सप्ताह अध्याय 13 जारी रखेंगे।